नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि 21वीं सदी में अगर एक चीज कही जाए जो हर मनुष्य के पास, हर मानव जिसके पास, जिससे ग्रसित है, वह क्या होगी? वह होगी अति चिंता, या हम कहें एंग्जाइटी। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी जो है वह है सेंचुरी ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि हर मानव किसी न किसी एंग्जाइटी में, किसी न किसी अति चिंता में घूमता दौड़ता हुआ, परेशान, किसी से बात करता हुआ, चेहरे से भाव ऐसे होंगे, ग्रसित दिखाई देता ही है। तो एंग्जाइटी आखिर होती क्या है? एंग्जाइटी क्यों होती है? इस एंग्जाइटी से, इस अति चिंता से क्या हम निवारण पा सकते हैं? ये एक बहुत ही मजेदार विषय है, एक सोचने वाली विषय है। तो आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को।
नमस्कार
डॉक्टर साहब। एंग्जाइटी एक ऐसी चीज है जो हम बात कर रहे हैं तो भी बात करते हुए हमें एंग्जाइटी होती ही है कि अब क्या बात हम करेंगे आपसे, क्या। तो हम समझते हैं कि सभी दर्शक जो देख रहे होंगे, हर एक के जीवन में एंग्जाइटी किसी न किसी प्रकार से होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर एंग्जाइटी होती ही क्या है, ये किस प्रकार का डिसऑर्डर माना जाता है, ये है भी डिसऑर्डर या नहीं है?
अच्छा, तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो दो प्रकार की होती है
जी।
एक तो है साइकोटिक डिजीज और दूसरी है न्यूरोटिक डिजीज। आम भाषा में अगर कहना हो तो जो पागलपन की बीमारियां हैं वो साइकोटिक डिजीज है, और न्यूरोटिक डिजीज वह है कि जिसमें व्यक्ति खुद जानता है कि मुझे बीमारी है। उसमें एक होगी एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऐसे दूसरा डिप्रेशन, फोबियाज, ऐसे कई प्रकार है। उसमें न्यूरोटिक में एक है एंग्जाइटी।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि एंग्जाइटी जो है हर मनुष्य को, हर मानव को मालूम होगी कि वो एंग्जाइटी की डिसऑर्डर से सफर करता है या उसे परेशानी है।
बिल्कुल।
तो हम सब पहचानते हैं, हम जानते भी हैं कि हमें किसी न किसी लेवल की एंग्जाइटी है ही है। तो ये एंग्जाइटी आखिर होती क्यों है?
एंग्जाइटी जो है, जिसको कहा है एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, कि फ्यूचर में क्या होना है, मैं उसको ठीक से डील कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं बहुत बड़ी समस्या तो नहीं हो जाएगी, इस प्रकार के जो विचार है, जिसको कहेंगे कि भविष्य के विचार। थोड़ी बहुत चिंता तो सबको होती है भविष्य की, लेकिन जो एंग्जाइटी के मरीज है वह बार बार सोचते ही रहते, अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, और बार बार जो उनको विचार आते उसके ऊपर शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, और कहीं उनके सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को एंग्जाइटी कहेंगे।
अब ये कहना चाहेंगे कि एक मन जो है उनका वो प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है एक ही थॉट को, किसी और चीज को लेकर बार बार, ऐसा कुछ होता
नहीं है? तो भविष्य की चिंता। अच्छा। प्री ऑक्यूपाइड कई रीति से हम हो सकते
कुछ
हैं।
अच्छा।
हाँ, कि भी भविष्य की चिंता कि भी क्या होगा, जैसे कि एग्जाम है तो भी एग्जाम में मैं पास हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जो मैंने पोर्शन स्टडी नहीं किया उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे जैसे कई जो लोग है कि उनकी रिटायरमेंट होनी है, तो रिटायरमेंट के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे,
अनसर्टेनिटीज को लेकर जो होती है कोई भी सिचुएशन जो अनसर्टेनिटी,
और उसको मैग्नीफाई करते हैं,
मैग्नीफाई करते हैं,
दूसरा रिपीट करते हैं बार
रिपीट। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि ये जो एंग्जाइटी है ये एंटिसिपेटरी स्ट्रेस से होती है, तो क्या कुछ पुराने थॉट्स हमारे, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस या प्रेजेंट के कुछ वरीज, वो भी हमारे अंदर एंग्जाइटी ला सकते हैं?
वो एंग्जाइटी नहीं लाएंगे। पास्ट के विचार जो है वो गिल्ट फीलिंग ला सकते हैं, और वर्तमान में तो एंग्जाइटी हो ही नहीं सकती
नहीं।
इस पल, दिस सेकंड, जैसे भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आना है, इस सेकंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि एक सेकंड के बाद ये हो जाए। ऐसे देखो तो सचमुच अगर हम वर्तमान में जी रहे हैं तो एंग्जाइटी नहीं है। भले कहेंगे कि ओवरऑल आप इस समय कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं
जी, हाँ,
कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके सामने, या तो और कोई मन मुटाव है किसी से,
पर वो एंग्जाइटी तो डॉक्टर साहब लानी चाहिए,
वो लाएगा, बट देन नो इट इज नॉट एट दिस मोमेंट, इट इज नो लिटिल लेटर। तो एंग्जाइटी एक्चुअली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इज ऑलवेज अ फ्यूचर। एक सेकंड के बाद भी तो फ्यूचर है ना।
तो एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी, इसको अगर लिंक किया जाए तो बिल्कुल साथ ही चलेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी इज ऑलवेज लिंक्ड विद अनसर्टेनिटी।
हाँ।
क्योंकि आपको आगे मालूम नहीं कि क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग विच हैज हैपेंड, या आप एंटिसिपेट करते हैं। हाँ, कुछ
जैसे कई लोग हैं ना, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं
जी हाँ,
और कुछ नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते उनको एंग्जाइटी होगी, जो समझते हैं भी समस्याएं तो होनी है ना। जब हम छोटे थे तब हमको पता नहीं था कि वर्तमान में क्या प्रॉब्लम होने, आज हमारे सामने वह समस्याएं हैं और हम उसके साथ डील कर रहे हैं। परंतु अगर कोई सोच सोच करके सोचो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो बार बार सोच करके वह एंग्शियस हो जाता है।
ना सभी एंग्जाइटी जो होती है ये हमारे शरीर पर या किसी भी मानव जिसको एंग्जाइटी है उसके ऊपर किस प्रकार के सिम्टम्स लाती है, किस तरह पता लगेगा कि यह व्यक्ति एंग्शियस है।
जो व्यक्ति में एंग्जाइटी, एक तो उनके विचारों में भी आएगी ना, तो वो अब समझ पाएगा, लेकिन अगर सिम्टम्स के रूप में देखना हो तो उसको नींद नहीं आएगी, शुरू में ही नींद आने में दिक्कत होगी, आधा घंटा एक घंटे तक उसको नींद देगी, हो सकता है सारी रात भर भी उसे नींद ना आए। दूसरा जो सिम्टम्स है उसकी हार्ट बीट बढ़ सकती है,
पाल्पिटेशन,
उसको स्वयं वो हार्ट बीट सुनाई देगी। और एक है अगर उससे हाथ भी मिलाओ तो देखेंगे उसके हाथ ठंडे हैं,
ठंडे होंगे,
तो एंग्जाइटी के कारण ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, और ब्लड फ्लो नहीं होने से हाथ ठंडे हो गए, पसीना हो सकता है ना, सर पर भी देखो तो उनको पसीना हो सकता है, और उनकी मूवमेंट में भी आप देख पाएंगे कि भी वो स्टेबल नहीं है,
ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता,
या तो भाई वो जैसे वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है, बार बार हिल रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है, यहां वहां देख रहा है, उसकी गेज क्लियर नहीं है, स्टेबल नहीं है,
भूख में भी फर्क हो जाता है, कई बार ज्यादा खाएंगे कम खाएंगे,
ज्यादा भूख लगना भी संभव, एंग्जाइटी है तो उसके कारण वो बार बार खाएगा, भूख मर भी सकती है, डिप्रेशन में भी ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ठीक से अगर पता चले तो इन दोनों को मनोरोग चिकित्सक है वो सेपरेट कर पाता है कि उसे वो एंग्जाइटी है या डिप्रेशन के कारण कुछ एक सिम्टम्स हो रहे हैं।
तो ये एंग्जाइटी जब हम ये सिम्टम्स जान लेते हैं तो ये आप कहेंगे किस प्रकार से हमारे जीवन को अफेक्ट कर देती है, मेरे को लगता है कि एक लाइफ को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देती है, एक पर्पजलेस लाइफ कर देती है।
तो कहेंगे जो जीवन का सुकून है, एक सेटिस्फेक्शन है ना हमें कि भी हम अच्छे से जी रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर देती है, आपको भी डिस्टर्ब करेगी, हो सकता है कि वो व्यक्ति औरों को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कंप्लेन करेगा बार बार कि मुझे ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसके कारण औरों को भी वो डिस्टर्ब करेगा, और वो जो भी काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, कई बार करेगा भी, परंतु ऐसा होगा कि जिसमें अपने को फोर्स कर रहा हूं, फोर्स करके वह कर रहा हूं, तो और ठीक से कर भी नहीं पाएगा, उसकी जो सचमुच प्रोडक्टिविटी है वो एफिशिएंसी 50% से भी कम हो जाएगी,
कम हो जाती है। तो लाइफ के हर पहलू को, सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है उसको, हर पहलू को वो अफेक्ट कर रही है, परफॉर्मेंस डाउन होती है, पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल पे भी, और एंग्जाइटी कुछ रोगों को भी जन्म दे सकती है,
डेफिनेटली
स्ट्रांग रोगों को भी जन्म दे सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो एंग्जाइटी है आपने बताया हमारे जीवन के हर पहलू को सुबह से शाम तक अफेक्ट कर रही है, तो इसका मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे संभव है, क्योंकि इसको हटाना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन मैनेजमेंट से पहले मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछना चाहूंगा कि एंग्जाइटी के साथ मैंने देखा है अलग कुछ और इमोशंस भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे एंग्शियस आदमी के अंदर डर जरूर होता है काफी हद तक,
डर भी हो सकता है एक प्रकार से, वरीज जो है ना,
जी हाँ, वरीज
भी उसके अंदर होगी नेचुरली, वो इनसिक्योर भी फील,
इनसिक्योरिटी की फीलिंग,
एंग्जाइटी के साथ,
एंग्जाइटी देखा जाए अलग एक अकेले रूप में मनुष्य को ग्रसित नहीं करती, लेकिन एक सिंड्रोम के रूप में
और चीजें भी साथ में आ जाती है।
तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसका एक ट्रीटमेंट की कुछ इजी गोइंग स्टेप्स हो जिससे हट जाए।
डॉक्टर मोहित, जैसे हमने इस बात पर चर्चा की कि एंग्जाइटी सदैव फ्यूचर की होती है, तो उस बात को अगर हम ठीक कर सके तो एंग्जाइटी का रूट कॉज भी हम ठीक कर पाएंगे। ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए, अपने आप को समझानी भी चाहिए कि भविष्य का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, जिस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है उसके बारे में आप चिंता करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, तो लोग भी हंसेंगे हमारे पर, तो ऐसे हमें भी सोचना चाहिए। दूसरी बात है, कहते हैं कि भविष्य वो प्रॉमिसरी नोट जैसा
है, बिल्कुल,
मैं आपको लिख के दूं कि मैं 100 रुपये दूंगा, और अगर नहीं दूं तो क्या करेंगे, छोटे अमाउंट के तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, कैसे सोचो कि भी फ्यूचर प्रॉमिसरी नोट जैसा है, तो उसकी अभी से मुझे चिंता नहीं करनी है। और तीसरी एक जो बहुत ही जरूरी बात है, कहा गया है कि पास्ट इज एक्सपीरियंस, फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन, एंड प्रेजेंट इज एक्सपेरिमेंट, अभी जो कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अपने आप को यह समझाओ कि लेट मी यूज माय पास्ट एक्सपीरियंस इन द एक्सपेरिमेंट व्हिच आई एम डूइंग नाउ टू ब्रिंग माय एक्सपेक्टेशन कम ट्रू।
जी,
तो इसलिए प्रेजेंट में ही जीना है, प्रेजेंट में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें ध्यान देना है, वहां पर कोई भी एंग्जाइटी नहीं है,
नहीं।
ना, और एक बात है, कवि ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा तब से बहुत बातों में चिंता करता था कि भविष्य में क्या होगा, मैं कैसे होऊंगा, मैं लाइफ में एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मेरी गृहस्थी को कैसे चलाऊंगा, बहुत सारी मुझे चिंताएं थी फ्यूचर की। लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूं, और देखा है कि वो जो मेरी एंग्जाइटी थी उसमें एक भी ट्रू नहीं हुई है, उस प्रकार की जो नेगेटिव बात जिसके बारे में मेरे में एंटीसिपेटेड स्ट्रेस थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात सचमुच सत्य है कि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है।
तो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि चिंता छोड़ दें आगे की फ्यूचर की।
हाँ,
सबसे अच्छी बात है कि जो चीज हमें मालूम ही नहीं, आगे जन्म ही नहीं हुआ, जिस रोड बनी नहीं उस तरफ जाना क्यों?
हाँ,
अभी तो हमें तो ये सोच हम पर आपको डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगता कि ये कहना आसान है? क्योंकि अक्सर हमारी जो चिंता है भविष्य की वो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड होती है।
हाँ जी,
हमारी जो प्रेजेंट स्थिति है वो से रिलेटेड होती है। जैसे कि एक आप एग्जांपल लीजिए, एक आम मनुष्य है जो बहुत खुश है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत एंजॉय कर रहा है, अक्सर देखा जाए बाय एंड लार्ज वो व्यक्ति भविष्य की चिंता कम करेगा।
हाँ जी,
कम करेगा एज कम्पेयर टू। लेकिन जो आज ही सेटिस्फाइड नहीं है, इसको कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां चल रही है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसको और आगे चिंता हो जाती है भविष्य की।
बिल्कुल, हाँ नहीं, ये हो सकता है
क्योंकि एक ये आ जाता है, क्योंकि हम कहें कि मैं आज बहुत दुखी हूं लेकिन मैं आगे की चिंता छोड़ ही दूं, मैं को एंजॉय करना है, उसका जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन मेरा भविष्य भी आज के एक्सपेरिमेंट पर ही आपने बताया उस पर डिपेंड करेगा।
मोहित जो आप कहते हैं ना, एज सच में थियोरेटिकली इट इज ओके, सत्य बात है कि जो हम पेशेंट्स में देखते हैं,
हाँ।
अब कोई भी मनोरोग चिकित्सक को पूछो
जी
कि भाई ये जो आपके पेशेंट्स है उनको आप देखेंगे ना, एंग्जाइटी वाले पेशेंट प्रेजेंट में तो सब कुछ अच्छा है, उनको कहो तो भी लाइफ में कोई टेंशन नहीं, बच्चे अच्छे हैं, है ना, वाइफ अच्छी है, लाइफ भी ठीक से चल रही है, लेकिन उनको एंग्जाइटी होती है। उल्टा कई बार देखते कि जिनको सचमुच प्रॉब्लम्स है प्रेजेंट में, हाँ, उनमें एंग्जाइटी कम भी हो सकती है, भले स्ट्रेस को वो फील कर रहे हैं परंतु उनमें फ्यूचर की एंग्जाइटी कम हो सकती है। तो मैं तो ये भी कहूंगा, एक है ना एक प्रकार की पर्सनालिटी होती है जो हम अति चिंता कह रहे हैं, अति चिंता है ना, कोई भी कारण से उनमें एक प्रकार की पर्सनालिटी डेवलप हो गई है।
यह
संभव है कि उन्होंने माता पिता को ऐसे देखा है और फिर खुद भी सोच ऐसा मेरे साथ भी होगा और अति चिंता में चले जाते हैं।
तो अक्सर ये फ्यूचर से ही रिलेटेड,
हाँ, ऑलमोस्ट फ्यूचर से है। और एक तो ये भी करना चाहिए ना, कई लोग करते हैं, बस सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई बार ये भी कि भी कुछ भी ना हो, कहते हैं कि भी आपके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप कहीं निकल पड़ो और कोशिश करते रहो तो वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने सचमुच ऐसा किया, हाँ, कई साल तक वो ऐसा रहा और फिर उसने सारी अपनी एक किताब लिखी है इसके बारे में। उसमें लिखा कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन सब कुछ मिल जाता था, हाँ, कहीं ना कोई कोई व्यक्ति मिल जाता था हेल्प करने के लिए, कोई छोटा मोटा काम भी मिल जाता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और उल्टा उन्होंने लिखा कि ये जो साल मैंने 4-5 साल बिताए उसमें बहुत नए नए अच्छे अच्छे अनुभव हुए।
तो इसको आप ये कहानी बताइए,
जब ना सिक्योरिटी से जी ना, आज व्यक्ति सिक्योरिटी का सारा सोचता है, वो भी जरूरी है, ये नहीं कहेंगे कि एक बैलेंस रूप में आपको फ्यूचर का सोचना है, सिक्योरिटी अपनी रखनी है फाइनेंशियल और प्रकार से, परंतु जब आप ज्यादा ही इसमें चले जाते हैं तो एंग्जाइटी निर्माण होती है।
तो आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, सम अप किया जाए कि फोकस जो है प्रेजेंट पर लगाया जाए, कंप्लीट फोकस को डाइवर्ट ना करके सारी एनर्जी अपनी आज जो मैं कर रहा हूं उसको परफेक्ट रूप से
करना,
बेस्ट रूप में, जैसे हम कहते हैं लिव फॉर टुडे, एंजॉय करें पूरा का पूरा, अपने हर कार्य को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खत्म करें, उसको अंजाम दें एंड प्लान फॉर टुमारो एंड पार्टी टू नाइट।
देयर इज अ डिफरेंस इनफैक्ट, नो
जी,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड वरिंग।
बिल्कुल सही कह रहे हैं,
क्या डिफरेंस है ये भी समझना चाहिए
जी।
कई जो ऐसे एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं वो यही कहते हैं कि भी मैं तो फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा हूं, परंतु प्लानिंग और वरिंग में क्या फर्क है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी भी क्षण उस विचार को स्टॉप कर सकते हैं, 10 मिनट प्लानिंग की फिर आपने स्टॉप कर दिया और काम में लगे।
वरिंग नहीं,
वरिंग जब कर रहे हैं तब वो चलना ही है।
जी हाँ बिल्कुल,
है ना, आप अपने ऑफिस में भी गए उसी की चिंता लगी है, खाना भी खा रहे उसी की चिंता लगी। तो इससे ये डिफरेंशिएट करो कि भी प्लानिंग और वरिंग में क्या फर्क है। जैसे कहते चिंता और चिंतन में भी फर्क है, चिंतन को हम स्टॉप कर सकते, चिंता को स्टॉप नहीं कर सकते।
तभी कहते चिंता चिंता के
समान है, बिल्कुल।
और डॉक्टर मैंने देखा कि अक्सर जो व्यक्ति अति चिंता करता है, एंग्जाइटी होती है, खाना भी खा रहा है तो कई बुजुर्गों ने कहा भी है कि उसे खाना लगता ही नहीं,
हाँ जी, हाँ।
कहाँ जाता है नहीं पता, वो रियली उसे एनर्जी नहीं देता
है,
क्योंकि कोई भी कार्य को अच्छा करने के लिए उस कार्य को एंजॉय करना जरूरी है। और जो अति चिंता में जो एंग्शियस व्यक्ति होता है वो अपने किसी कार्य को एंजॉय नहीं कर पाता, कुछ भी कर रहा होगा उसे करने के लिए कर रहा है, तो ना केवल कार्य व्यवहार में अपना एंजॉय नहीं कर पाता, पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना कंप्लीट फोकस, हम सब लोग आज सोचे कि हमें केवल अपने प्रेजेंट पर लगाना है। और कोई इंटरेस्टिंग चीज आप बताना चाहें?
और देखें तो इसमें रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है
जी,
कि चिंता का भी कहेंगे कि एंटीडोट है, वो एंटीडोट है
रिलैक्सेशन।
और जनरल रिलैक्सेशन तो, और एक क्या करना चाहिए कि नेचर को भी इंजॉय करो
जी। हाँ,
नहीं सवेरे उठो, मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाओ, और भले टेरेस में ही बैठ जाओ, गैलरी में बैठो और सूर्योदय हो रहा है अपने नेचर को देखो, हो सके तो कहीं जाओ वॉक के लिए जाओ, गार्डन में जाकर के बैठो, यू नो ट्राई टू इंजॉय नेचर। आप इंजॉय करेंगे नेचर को तो भी ऑटोमेटिक जो ये विशियस सर्कल है वो विशियस सर्कल ब्रेक होगा आपका, और जो एंजाइटी है वो एंजाइटी को कम कर सकेंगे। और एक बात जिससे मैंने अपनी एंजाइटी को कम किया, सबके जीवन में प्रॉब्लम आती है, तो कई बार तो सीरियस प्रॉब्लम भी आते हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को पूछता हूं कि अधिक से अधिक बुरा क्या होगा, कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मैक्सिमम क्या प्रॉब्लम होना है, और भी मैक्सिमम ये होगा ना उसको एक्सेप्ट कर लो,
एक्सेप्ट कर लो
कि मैक्सिमम ये बुरा होना है, भले 99.9% वैसा नहीं होना
नहीं
है, स्टिल यू एक्सेप्ट भी वर्स कम यह होना है, और वो हो स्टिल आई एम कंफर्टेबल।
और आप देखें कि कोई गंदी से गंदी सिचुएशन भी आती है, आप बहुत ज्यादा बुरा भी उसका सोचें वो होता नहीं है वैसा कभी,
99.9%
होता ही नहीं है बिल्कुल।
फिर भी सपोज हुआ, देन नो योर एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी,
एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी,
और जो आपके कंट्रोल में वो करना भी है। आपने भी जब ऐसे बताया कि आज का दिन अच्छे से अच्छा बिताना है, मोस्ट प्रोडक्टिव बनना है ना, मुझे कमाना भी है, रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करना है, भले उसमें से कुछ इच्छा मैं सेव भी करूं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का प्लानिंग करूं, लेकिन चिंता नहीं करनी है।
और कई लोग मैंने देखा है इसमें नेचर का बहुत अच्छा अभ्यास भी इसमें लेते हैं। कहा जाता है डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि नेचर हैज अ वेरी नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, उसका काम ही है देना, तो अगर हम अपने इंटरनल नेचर, अपने उसके नेचर के, स्वयं के नेचर के भी क्लोज चले जाए, क्योंकि अक्सर हमारी जो चिंता है, मैं सोच रहा था कि वो उसका रिमोट कंट्रोल क्या है, बाहर की सिचुएशंस के हाथ में होता है। हमारी चिंता का कारण क्या होता है, हमारी चिंता का कारण मेरी सोच होती है जो कि एक्सटर्नल सिचुएशन से अफेक्टेड होती है। ये हुआ तो मेरे को चिंता हुई, वो हुआ, लेकिन अगर मैं अपने मन को ही पावरफुल बना लेता हूं तो चिंता का,
तो हम ये कहेंगे कि मैनेज योर सेल्फ
जी,
सेल्फ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइटैनिक पर एक फिल्म बनी है
जी, हाँ बिल्कुल,
जिसमें वो कहते हैं कि जब ये सारा होने लगता है, लोग डर जाते हैं, तो जोर से चिल्लाता है कि टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ
जी।
तो बस यही बात है यहां भी, हमारे जीवन में भी एंग्जाइटी से आप 100% मुक्त होना चाहते हो तो टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, योर फिजिकल सेल्फ एज वेल। तो वो अगर सेल्फ मैनेजमेंट हम अच्छे से करना सीख जाए तो एंग्जाइटी पर विजय प्राप्त करना भी इजी है।
तो डॉक्टर साहब आपने बताया सेल्फ मैनेज, तो ये सेल्फ को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
अच्छा,
क्योंकि सेल्फ तो क्या मैं अपने शरीर को किस तरह मैनेज करूं, या इसमें सेल्फ मेरे थॉट्स की बात होती है, किस सेल्फ की बात आप कर रहे हैं?
वास्तव में सेल्फ वह हमारी एक इनर एनर्जी है, अलग अलग से कर सकते हैं
जी।
कि फॉर एग्जाम्पल कि भी किसी को हम कहे कि भी आप कौन हो, तो कहेगा मैं इंजीनियर हूं ना, उसको पूछो कि भी आप ये कंपनी में ज्वाइंट किए है ना, उससे पहले भी तो आप थे, तो कहेगा कि भी तब तो मैं स्टूडेंट था, तो मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन तब भी तो आप थे, है ना। ऐसे अगर हम पूरा देखते जाए तो इस बात पर आएंगे कि भी वी आर अ बीइंग, नहीं हम स्पिरिचुअल बीइंग है, एक है वास्तव में, और वो जो इनर सेल्फ है इज नॉट फिजिकल, वो जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको मैनेज करना है। और उसको भी मैनेज करने में उसकी तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं
जी,
वो तीन सूक्ष्म शक्तियों को मैनेज करेंगे तो सेल्फ को आप मैनेज कर रहे हैं वास्तव में। और तीन वो सूक्ष्म शक्तियां हैं मन, दूसरी है बुद्धि, और तीसरे है संस्कार। मैं इन तीनों की जो वर्किंग सिस्टम है उसको समझना चाहिए, तब उसको सही रूप से हम मैनेज कर सकेंगे। कि मन जो है, माइंड हैज एवरीथिंग पॉसिबल, ऐसे नहीं, मन के लिए सब कुछ पॉसिबल है। कहते हैं ना कि भी जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो मन कहां भी पहुंच, कुछ भी सोच सकते,
नो बैरियर्स।
हाँ, एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव भी पॉसिबल है। मन जो है वह मुक्त घोड़े जैसा है, और अभी मन को अगर आपको मैनेज करना है तो प्यार से मैनेज करना पड़ेगा, वो फोर्स से उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे बच्चे को हम प्यार से समझाते, ऐसे अपने आप से भी प्यार से बातें करो
जी,
अपने नाम से बात करो, हे गिरीश तुझे जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। हाँ, अभी तू शांति रह, तू शांत होगा तो तुझे जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे बहुत ही प्यार से मन को समझाओ तो मन उस बात को समझेगा, जैसे बच्चे को समझाते हो
जी।
फिर बुद्धि जो है वो प्यार से नहीं समझेगी। हाँ, बुद्धि एक जज जैसी है, तो उनको आर्ग्यूमेंट चाहिए। भी जज भी जो भी दोनों वकील आर्ग्यू करेंगे उसके आधार से निर्णय करते हैं। तो बुद्धि भी आप जो तर्क से चिंतन करते हो उसके आधार से वह प्रेफरेंस देती है। तो कोई भी बात में बुद्धि को अच्छी तरह तर्क से समझाओ, अगर अच्छा सा बुद्धि को तर्क मिल जाए तो तुरंत वह वही दिशा में जाएगी। उसको आप ठीक से मैनेज, अभी यही बात है, हम अति चिंता की बात कर रहे हैं, तो वहां अगर बुद्धि को अच्छे से समझा दो कि नहीं होना है, 99.9% नहीं होना है, जो 0.1% पॉसिबिलिटी उसके बारे में मैं क्यों सोचता हूं। तो ऐसे अगर तर्क मिल गए, और भी कोई तर्क ढूंढो कि जिससे आपकी जो फ्यूचर की चिंता है ये भी समझो, सोचो कि बचपन में भी मुझे चिंता होती थी कि मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या होगा, वो अभी प्रैक्टिकल में नेगेटिव नहीं हुआ, तो फ्यूचर में भी नहीं होना है। तो कोई ना कोई तर्क ढूंढो, और संस्कारों को तर्क की भी इफेक्ट नहीं होती है, संस्कारों को ऑर्डर करना
होता है।
संस्कार मजदूर जैसे है, उनको आपको ऑर्डर करना है। तो सचमुच संस्कार को भी ऑर्डर करो
जी,
कि एकदम शांत हो जा, बस इसके बारे में सोचना नहीं है, स्टॉप ना। अपने आप को भी एक हो कि जब भी फ्यूचर की चिंता आए कि भी क्या होगा 10 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं कैसे जीवन जीऊंगा, तो को स्टॉप, अभी वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस इसी का आनंद ले, इसी में कॉन्सेंट्रेट कर। तो ऐसे आप 5-7 बार भी करो तो एक वह भी आदत हो जाएगी।
तो आप ये कहते हैं कि कोई भी एंग्जाइटी या एंक्शियस सिचुएशन आए या हमारे मन में कोई थॉट चल रहा हो तो लॉजिकली हम अपने मन को समझा सकते हैं, बुद्धि को तर्क दे सकते हैं कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज होनी ही नहीं उसके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो। तो ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी का लेवल जो है वो डाउन आता चला
और
है।
संस्कारों को फोर्स कर दें
कि नहीं,
ऐसा नहीं। और ये भी कहो कि भी वो सही पहलू को मुझे पता नहीं है, इसके कारण चिंता हो रही है
जी।
नहीं, कई बार हम फालतू जो टेंशन लेते हैं उसमें उस पर्सपेक्टिव का हमें पता नहीं होता। जीवन में हम समझ ले कि सचमुच शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है ना, एक सिक्योरिटी जो है वो आउटसाइड सिक्योरिटी इज इम्पॉसिबल
है
ना, आप कुछ भी कर लो इनसिक्योरिटी रहेगी। व्हेन यू बिकम सिक्योर्ड फ्रॉम विदिन तो फिर आउटसाइड सारी इनसिक्योरिटीज आ जाए, आपको प्रॉब्लम।
बिल्कुल सही कह रहे
हैं ना। तो इस बात को अगर अच्छी तरह से लोग समझ ले तो पॉसिबल है कि सदा के लिए ये इनसिक्योर जो फीलिंग्स है, एंग्जाइटी है, उससे मुक्ति प्राप्त।
और ये भी आप देखिए कि ये जो इनसाइड सिक्योरिटी है, ये आपने इतना अच्छा एग्जांपल दिया, अपने आप की रियल एनर्जी को समझना और उसको यथार्थ योग में लगाना, बाबा के साथ, जिसे हम कहें स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ, जिसे हम प्यार से कहते हैं, उनके साथ हम योग लगाएं डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। ये प्रोसेस डॉक्टर साहब आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लाई करते हैं, इस मेडिटेशन को आप जिसे बोलते हैं, इसको कहा जाता है, इसको आप कैसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं?
मैंने तो क्या किया, ये सोचा है कि सवेरे 8 बजे तक कोई भी बाह्य काम नहीं करना है
जी। अच्छा,
इमरजेंसी आए अलग बात है, लेकिन जब तक इमरजेंसी नहीं हो, जैसे कि मैं बुक्स लिखता हूं और कुछ करता हूं, तो 8 बजे तक नहीं करना है। सवेरे जल्दी उठ जाओ, जैसे हम तो बहुत जल्दी उठते हैं। भले लोग जल्दी आमतौर पर न भी उठ सके तो भी मैं कहूंगा कि भी सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाओ और फिर स्नान आदि कर लो, और उसके बाद चाहे तो भले थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करो या फिर उस समय मेडिटेशन करो, सबसे अच्छा होगा। मैं भी उस समय लक्ष्य रखता हूं कि कम से कम 45 मिनट्स अच्छा से मेडिटेशन करना है, और वो देखा है कि भी वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स इज इक्वल टू 3 आवर्स ऑफ स्लीप। कई बार कम नींद भी मिली हो तो भी उस समय अच्छा से मेडिटेशन हो जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। और तब फिर क्रिएटिव विचार भी आते हैं। और दूसरा, मैंने अपने आपको ये देखा है कि भी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें अपने आप को समझानी है
जी।
देखा है कि भी ज्ञान से ये सारा परिवर्तन होता है। प्रैक्टिस में भी मैंने अनुभव किया कि भी कितना भी उनको समझाओ, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स दो वो करो, तो भी लोगों में परिवर्तन नहीं आता। परंतु ज्ञान की कोई बात अगर समझ में आ जाए, जैसे कि मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि भी जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सब कुछ मेरे अंदर है, बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है,
तो ऑटोमेटिकली
हाँ ये समझ में आ गया, तो इतनी अंदर में सेटिस्फेक्शन होता। और जो ये समझ में आ गया कि भाई ये जीवन है, तो ये जीवन में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना वही अल्टीमेट है
जी।
तो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में, बड़े से बड़ा व्यक्ति बन गया इंडस्ट्री में या मेडिसिन में पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर अंदर में इनसिक्योरिटी रही, अंदर में स्ट्रेस रही, तो क्या फायदा है?
तो कहा भी जाए कि एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, तो एंग्जाइटी का काफी एलिमेंट जो है कम हो जाता है।
प्राप्ति
का ज्ञान, ज्ञान के साथ सेटिस्फेक्शन अगर आ जाए।
अभी तुम्हारे पास इतना समय नहीं
समय
है, ज्ञान बड़ा गुई है,
गुई है।
ज्ञान की कहीं गहराई की बातें अगर हम समझते हैं, जैसे कि एक सिंपल बात बताता हूं कि लोगों को टाइम के बारे में नहीं, फ्यूचर का लोग आप देखो, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी है ना, होरोस्कोप को देखते हैं
जी। हाँ बिल्कुल,
है ना, वो कॉलम्स आती है न्यूज़पेपर में, क्योंकि लोग सब ये जानना चाहते हैं कि भी टाइम हमारे से क्या चाहता है।
अच्छा, बहुत ही आपने सुंदर रूप से हमें बताया कि एंग्जाइटी का आजकल प्रेजेंट डे में जो मनुष्य, हर मनुष्य ग्रसित है, उसका कितने सुंदर रूप से हम निवारण कर सकते हैं, और सब कुछ हमें ही करना है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रियलाइजेशन, उसको महसूस करना। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि चिंता हमारे अंदर हम रखते हैं तो वो हमारी अपनी मर्जी से रखते हैं। इसे कहा जाए इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर हम चाहें तो आज हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि केवल अपनी सोच को परिवर्तित करने से हम उस चिंता से या अति चिंता से या एंग्जाइटी से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। केवल जरूरी है अपने विचारों को बदलना, अपने विचारों को ना केवल बदलना, उनको केवल मोड़ना, मोड़कर अपने मन को, अपनी बुद्धि को तर्क से, प्यार से समझाना और कहना कि नहीं, ये चीज नहीं होने वाली, केवल अच्छा ही होगा। पुरुषार्थ मुझे करना है, एफर्ट देना है, लेकिन अच्छे के लिए एफर्ट देना है। यदि मैं आज हिम्मत रखता हूं, हम और आप हिम्मत रखते हैं, तो मुझे आशा है कि हम अपने आप को इस एंग्जाइटी से, इस अति चिंता से मुक्त बना पाएंगे। आशा है कि आपको हमें एपिसोड पसंद आया होगा। हम अपने अगले एपिसोड में फिर एक ऐसा विषय लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।